लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे यथार्थ मानव बंधुत्व के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने धर्म के कारण भेदभाव से पीड़ित हैं, ताकि उनके मानवाधिकारों और उनकी गरिमा को पहचाना जा सके तथा वे प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन के भागीदार बन सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्तिगीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन गाउडेटे एट एक्सुल्टाते की चर्चा कर रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस का यह तीसरा प्रेरितिक प्रबोधन हम सबों के लिए वर्तमान विश्व में पवित्रता हेतु एक निमंत्रण देता है। अपने इस प्रेरितिक प्रबोधन में संत पापा फ्रांसिस हमारा ध्यान इस ओर केंद्रित कराना चाहते हैं कि हम वर्तमान परिवेश में जहां कहीं भी हैं, अपने में पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रेरितिक प्रबोधन के तृतीय अध्याय की चर्चा करते हुए हमने धर्म ग्रंथ में यीशु ख्रीस्त के धन्य वचनों की चर्चा की, जो हमें पवित्रता के मार्ग में बढ़ने हेतु मददगार सिद्ध होते हैं। आज हम तृतीय अध्याय स्वामी के प्रकाश में का अंत करेंगे। हमने अपने पिछले प्रसारण के अंत में सुसमाचार के केंद्र बिंदु की चर्चा की, जो हमें किसी भी व्यक्ति के प्रति भले कार्य करने का आह्वान देता है। हमारे जीवन में नेक और भले कार्य हमें यीशु के वचनों के आधार पर एक अच्छा ख्रिस्ती होने को मदद करते हैं। श्रोताओ, हम अपने में ऐसा सोच सकते हैं कि ईश्वर की महिमा हमारी आराधना और प्रार्थना के द्वारा होती है, या केवल कुछ नैतिक नियमों के पालन करने में ही। यह सच है कि हमारे जीवन की प्रधानता ईश्वर के साथ हमारा संबंध स्थापित करने में है, लेकिन हम यह नहीं भूल सकते कि अंतिम मापदंड जिसके आधार पर हमारे जीवन का न्याय किया जाएगा वह यह है कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। प्रार्थना अपने में मूल्यवान है, क्योंकि यह प्रेम करने हेतु हमारी निष्ठा को प्रतिदिन पोषित करती है। हमारे दैनिक जीवन की आराधना ईश्वर को प्रिय तब होती है जब हम अपने जीवन को उदारता पूर्वक जीते हुए प्रार्थना में मिले ईश्वरीय उपहार को अपने भाई बहनों के संग साझा करते हैं। उसी भांति हमारा प्रार्थना में जीवन क्या यह सही रूप में वास्तविक है? हम इसकी परख बेहतर रूप में तब करते हैं जब हम ईश्वर की करुणा में अपने जीवन को परिवर्तित होता पाते हैं, क्योंकि करुणा केवल पिता का कार्य नहीं है, बल्कि यह वह मापदंड है जिसके फलस्वरूप हमारे लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि कौन उनकी सच्ची संतान है। करुणा कलिसियाई जीवन का आधारभूत स्तंभ है। इस संबंध में संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि करुणा अपने में न्याय और सत्य को अलग नहीं करती है। वास्तव में हमें यह कहना है कि करुणा न्याय की परिपूर्णता है, और यह ईश्वर के सत्य को प्रभावकारी ढंग से हमारे लिए प्रस्तुत करती है। श्रोताओ, संत पापा कहते हैं कि मैं यहाँ संत थॉमस अक्विनस के बारे में सोचता हूँ, जो हमें स्वयं से सवाल करने को कहते हैं कि कौन सा मेरा कार्य अपने में संभ्रत है। हमारा वह कौन सा बाह्य कार्य है जो सर्वश्रेष्ठ रूप में ईश्वर के लिए हमारे प्रेम को व्यक्त करता है। संत थॉमस बिना हिचकिचाहट के इसके बारे में कहते हैं कि वे हमारे करुणा के कार्य हैं, जिन्हें हम अपने पड़ोसियों के लिए करते हैं, जो हमारे लिए हमारी आराधना से भी बढ़कर हैं। हम अपने बाह्य बलिदानों और उपहारों के द्वारा ईश्वर का हित नहीं करते, बल्कि हम उन्हें अपने लिए और अपने पड़ोसियों की भलाई में करते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे बलिदान की जरूरत नहीं है, बल्कि वे हमसे चाहते हैं कि हम उन्हें उनके लिए अर्पित करें, जिससे उनके द्वारा हम में ईश्वर के प्रति भक्ति जागृत हो और यह हमारे पड़ोसियों के लिए लाभ का कारण बने। अतः करुणा, जिससे हम दूसरों के दोषों की आपूर्ति करते हैं, हमारे द्वारा ईश्वर को चढ़ाया जाने वाला एक अति स्वीकार्य बलिदान होता है, जिसका लाभ हमारे पड़ोसियों को सीधे तौर पर होता है। श्रोताओं, जो लोग सच्चे रूप में अपने जीवन के द्वारा ईश्वर की महिमा करना चाहते हैं, वे जो पवित्रता में बढ़ने की चाह रखते हैं, वे अपने में करुणा के कार्य को एक चित मन से और एकग्रता में करने हेतु बुलाए जाते हैं। कोलकाता की संत तेरेसा ने इस बात का अनुभव स्पष्ट रूप में किया। हाँ, मेरी बहुत सारी मानवीय बुराइयां और असफलताएं हैं, लेकिन ईश्वर हमारी ओर झुकते और मेरा, आपका और सबों का उपयोग अपने कार्यों के लिए करते हैं, जिससे हम दुनिया में उनके प्रेम और करुणा के वाहक बन सकें। वे हमारे पापों, कमजोरियों और हमारी बुराइयों को अपने ऊपर लेते और हमसे दूर करते हैं। वे दुनिया को प्रेम करने हेतु हम सबों के ऊपर निर्भर करते हैं और यह प्रकट करते हैं कि वे उसे कितना प्रेम करते हैं। यदि हम अपने ही चिंता में खोए रहें तो हमारे पास दूसरों के लिए समय नहीं रह जाएगा। श्रोताओं, सुखवाद और उपभोक्तावाद हमारे पतन के कारण बन सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने सुख सुविधाओं तक ही आसक्त होते तो हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचने और अपने अधिकारों तक ही सीमित होकर रह जाते हैं, और ऐसा होने से हम अपने में यह एक सख्त जरूरत की अनुभूति करते हैं कि जीवन का लुफ्त उठाने हेतु हमें अपने लिए एक समय की जरूरत है। जब तक हम अपने जीवन को साधारण रूप में जीने का अभ्यास नहीं करते, तब तक हम अपनी ओर से दूसरों के लिए सोचने और उनकी चिंता करने हेतु अपने में एक तरह से कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक उपभोक्तावादी समाज की ज्वलंत मांगों का विरोध, जो हमें एक तरह से अपने में दरिद्र और असंतोषी बना देता है, यद्यपि हम अपने में सभी चीजों को पाने की चिंता में बने रहते हैं। उसी प्रकार, जब हम छिछली सूचनाओं, तत्काल संचार और आभासी वास्तविकता के जाल में पड़ जाते, तो हम अपने कीमती समय को खोने लगते और शारीरिक रूप में दुखों के शिकार अपने भाई बहनों के प्रति उदासीन हो जाते हैं। फिर भी दुनियादारी की अंधड़ में हम सुसमाचार को अपने मध्य ध्वनित होता पाते हैं, जो हमें एक अलग जीवन देने की प्रतिज्ञा करता है, एक अधिक स्वास्थ्य और खुशी से भरा जीवन। संतों का पुख्ता साक्ष्य हमें उनके जीवन में देखने को मिलता है, जहां वे धर्म ग्रंथ के वचनों और अंतिम विचार के अनुरूप अपने जीवन को जीते हैं। यीशु ख्रिस्त के वचन हमारे लिए थोड़े हैं, यद्यपि वे हमारे लिए व्यवहारिक और सटीक बैठते हैं। यह ख्रिस्तीयता के लिए और भी सच्चा साबित होता है, जिन्हें हम अपने जीवन में अमल करने हेतु बुलाए जाते हैं। यह हमारे लिए अध्ययन और चिंतन की विषय वस्तु हो सकती है, लेकिन इसका तात्पर्य हमारे लिए सुसमाचार को अपने दैनिक जीवन में जीना है। तीसरे अध्याय के अंत में संत पापा फ्रांसिस हम सबों से आग्रह करते हैं कि हम धर्म ग्रंथ के पदों का अध्ययन निरंतर करें, उन्हें अपने जीवन में सार गर्भित बनाएं, उनका उपयोग प्रार्थना करने हेतु करें और उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करें। वे हमारे लिए लाभप्रद होंगे, वे हमें सच्चे रूप में आनंद प्रदान करेंगे। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन गौदेते एत एसुलताते की चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
तेरे बिन मैं उदास फिरता, तेरे बिन मैं बेचैन बैठा, तेरे बिन मैं उदास फिरता, तेरे संग जीवन बिताऊं, तेरे संग मैं रहूं, तेरे संग जीवन बिताऊं, तेरे संग मैं रहूं, जाऊं कहां जाऊं कहां।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज 18 जनवरी से ख्रिस्ती एकता प्रार्थना सप्ताह शुरू हो रहा है। इस प्रार्थना सप्ताह में इस साल 3 ज्ञानों पर चिंतन करने का आह्वान किया गया है। संत पापा फ्रांसिस ने 18 जनवरी को एक ट्वीट में लिखा, ज्योतिषों के समान जो पूर्व से राजा मसीह को दंडवत करने बेतलहम आए, हम ख्रिस्ते भी तीर्थयात्री हैं, जो विभिन्न ख्रिस्ते समुदायों एवं परम्पराओं के बीच पूर्ण एकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें एवं हमारी नजरें यीशु हमारे प्रभु में टिकाए रखें। संत पापा फ्रांसिस ने फिलीपींस में आए भयंकर भूकंप राय से प्रभावित लोगों तथा पोलैंड एवं बेलारूस की सीमा पर फंसे अप्रवासियों की मदद करने का निर्णय लिया है। वैटिकन के समग्र मानव विकास हेतु गठित परमधम पीठे परिषद द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि भयंकर तूफान राय को देखते हुए, जिसने फिलीपींस में अधिक प्रचंडता मचाई है, संयुक्त राष्ट्र के सूत्रों के अनुसार 11 प्रांतों के करीब 8 मिलियन लोगों को प्रभावित किया है तथा काफी सामग्रियों की क्षति हुई है। संत पापा ने लोगों की मदद हेतु समग्र मानव विकास हेतु गठित परमधम पीठे परिषद के माध्यम से प्रथम अनुदान राशि के रूप में 1 लाख यूरो भेजने का निर्णय किया है। फिलीपींस के प्रेरितिक राजदूत के सहयोग से यह रकम स्थानीय कलीसिया को भेजी जाएगी तथा इससे आपदा से सबसे अधिक प्रभावित धर्म प्रांतों को प्रदान की जाएगी। इस अनुदान को संत पापा की ओर से उनके आध्यात्मिक सामीप्य की पहली ठोस अभिव्यक्ति के रूप में देखी जा रही है, जिसको उन्होंने 19 दिसंबर 2021 को देवदूत प्रार्थना के उपरांत प्रकट की थी। देवदूत प्रार्थना के दौरान उन्होंने उनके लिए माता मरियम की सुरक्षा की भी कामना की थी। अनुदान राशि जिसमें फिलीपींस के लोगों के प्रति संत पापा का प्रार्थनामय सहयोग है, यह उस मदद का हिस्सा है जिसको पूरी कैथोलिक कलीसिया में लागू किया जा रहा है, जिसमें कई कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन एवं अनेक उदार संगठन शामिल हैं। इस बीच संत पापा ने 1 लाख यूरो पोलैंड एवं बेलारूस की सीमा पर फंसे लोगों की मदद के लिए भी कारितास पोलास्का को भेजने का निर्णय किया है, ताकि करीब 10 वर्षों से जारी संघर्ष में इन दोनों देशों के बीच फंसे लोगों की मदद हो सके। लेबनान की राजधानी में आर्मेनियाई कैथोलिक महागिरजाघर संत एलाइजा एवं संत ग्रेगोरी प्रकाशक में आर्मेनियाई कैथोलिकों के सिलिसिया के प्रांतीय धर्माध्यक्ष रफाइल बेड्रोस 21वें ने सभी विश्वासियों को निमंत्रण दिया है कि वे मुक्तिदाता ख्रिस्त एवं यूखरिस्ट के रहस्य को देखते हुए पृथकताओं से ऊपर उठें। लेबनान के बेरूत में ख्रिस्ती एकता हेतु प्रार्थना सप्ताह का उद्घाटन करते हुए सिलिसिया के आर्मेनियाई प्रांतीय धर्माध्यक्ष रफाइल ने एक चिंतन प्रस्तुत किया है तथा उन बातों की याद की है जो ख्रिस्तों को एक साथ लाता है। इसकी शुरुआत मेल मिलाप के संस्कार में विश्वासों की प्रार्थना से होती है। जब हम पाप स्वीकार के लिए जाते हैं, हम कहते हैं, हे धर्म पिता, मुझे क्षमा कर, क्योंकि मैंने मन वचन कर्म और चूक से पाप किया है। महाधर्माध्यक्ष ने याद किया है कि खासकर एकता के विषय मकसद और शब्द मेल नहीं खाते, तथापि हम एकता की चाह रखते हैं। हम इसके सच्चे अर्थ को नहीं समझते हैं। हम पृथ्वी पर फैले हुए हैं और व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्वार्थ के उथल पुथल में पड़े हुए हैं तथा अपने मुक्तिदाता को भुला दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमने इसके उद्देश्य को ही भुला दिया है जो मुक्ति का रहस्य है। राधिता मदक्ष ने गौर किया है कि कई लोगों ने एकता के लिए कार्य किया है एवं इसके लिए जोर दिया है, किंतु कभी कभी हम एक दूसरे को अपने सिद्धांत के करीब लाने के लिए रोमी सैनिकों के समान काम करते हैं, जिन्होंने क्रूस के नीचे यीशु के कपड़े पर चिट्ठी डाली। हम भी वैसा ही करते हैं, ख्रिस्त के कपड़े पर झगड़ा करते हैं। उन्होंने कहा कि ख्रिस्त किसी दल के लिए नहीं, बल्कि सभी राष्ट्रों, पूरी मानव जाति के लिए जन्मे और क्रूसित हुए। उन्होंने कहा कि हमें बेतलहम के प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो चरवाहों, ज्ञानियों और मुक्ति के सुसमाचार का मूल है। सुसमाचार हमारे पास लाया गया है और यह मुक्तिदाता ख्रिस्त में है, जो हर दिन जन्म लेते और हर गिरजाघर में यूखरिस्त के हर रहस्य में उपस्थित हैं। यही प्रार्थना है जो हमें एक दूसरे को यह बतलाने के लिए प्रेरित करती है कि बपतिस्मा संस्कार में कोई भेदभाव नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि विभिन्न कलीसियाओं की परंपराएं एवं धरोहर मिलकर एक सुंदर स्वसमता का निर्माण करते हैं, जिससे सृष्टिकर्ता की स्तुति होती है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम एक नया जीवन की शुरुआत करें जो प्रेम एवं एकात्मकता से पुष्ट हो। संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार को बोस्निया हर्जेगोविना प्रेसिडेंसी के वर्तमान राष्ट्रपति जेल्जो कोम्सिक से वैटिकन में मुलाकात की, जिन्होंने बाद में वैटिकन विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघर से भी मुलाकात की। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य सचिवालय में सौहार्दपूर्ण बातचीत में दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय अच्छे संबंध की सराहना की गई तथा प्रेसिडेंसी की प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। बोस्निया हर्जेगोविना के राष्ट्रपति एवं महाधर्माध्यक्ष गलाघर ने देश की घरेलू स्थिति पर भी गौर किया तथा सभी नागरिकों के कानूनी एवं सामाजिक समानता को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। वक्तव्य में कहा गया है कि अन्य बातों में कुछ क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार किया गया। तिग्रिनिया जाति की धर्म बहनें जो दो विभिन्न धर्म सामाजिक समुदायों से आती हैं, जिन्हें एक महीना पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, वे सभी साकुशल हैं। यह तथाकथित टाइग्रे विद्रोहियों के निकट लोगों की पहचान करने की एक कार्रवाई थी। इथोपिया पुलिस ने पौली के संत विंसेंट दी चैरिटी की पुत्रियों के धर्म संघ की छह धर्म बहनों और उर्सुलाइन ऑफ गंदिनो की एक धर्म बहन को रिहा कर दिया है, जिसको 30 नवंबर को आदिस अबाबा में गिरफ्तार कर लिया गया था। विदेश एजेंसी के रिपोर्ट अनुसार सभी बहनें अच्छे स्वास्थ्य के साथ बतलाई जा रही हैं। इस बीच कोबो के दो उपयाचकों एवं दो धर्म बहनों के बारे कोई जानकारी नहीं है, जो इथोपिया में तिग्रिनिया जाति के हजारों लोगों के साथ कैद में हैं। उन्हें विस्थापित किया एवं किसी अनिर्दिष्ट स्थान पर रखा गया है। धर्म बहनों को पुलिस की एक छापामारी के दौरान कब्जे में लिया गया था। सभी टाइग्रे जाति की महिलाओं को गिरफ्तार करने के बाद इस जातीयता के खिलाफ सरकारी बलों द्वारा एक अभियान जारी किया गया था, जिन पर देश भर में टाइगर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के विद्रोहियों को सहायता देने और उन्हें उकसाने का आरोप लगाया था। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।